सच्चा जीवन है, प्रेम ही शिष्टाचार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है।
प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सुख का सार
पावन पथ पर चल के सुख में जीवन जी लो। प्रेम ही सद्भावना है, प्रेम प्रभु का उपहार है। प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है।
ओम शांति। राजयोग के द्वारा हम परमात्म अनुभूति कैसे करें, उसके लिए हमें परमात्मा की पहचान मिली। परमात्मा ने अपनी पहचान हमें स्वयं ही दी है कि मैं कौन हूं। परमात्मा ने अपनी पहचान में अपना नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य, ये सारी बातों की पहचान दे दी है। जब भी हम किसी का परिचय लेते हैं तो अक्सर करके पांच बातों का परिचय लेते हैं। पहले पूछते हैं आपका नाम क्या है, फिर रूप, अगर वो सामने नहीं है तो उनका फोटो मंगाते हैं, रूप मालूम हो। फिर उनकी विशेषताएं मांगते हैं, पूछते हैं क्वालिफिकेशंस, क्या क्या उनमें गुण है, कहाँ तक पढ़ाई की है, क्या डिग्री है, ये उसके क्वालिफिकेशंस है, कितनी योग्यताएं हैं। फिर चौथा उसका धाम, उसकी एड्रेस पूछते हैं। फिर पांचवा उसका कर्तव्य, व्यवसाय, वो क्या करता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों का ही परिचय जानने से दोनों का मिलन सहज हो सकता है। तो आत्मा की तो पहचान आपको मिल गई। आत्मा की पहचान में नाम क्या देंगे आत्मा को? परमात्मा की पहचान में परमात्मा को क्या नाम देंगे? वैसे आत्मा के ऊपर कोई विशेष नाम नहीं पड़ेगा, ये आत्मा तो आत्मा ही है। पर जिस नाम से आत्मा की पूजा होती है वो भी प्रसिद्ध नाम है, और जिस नाम से परमात्मा की पूजा होती है वो भी प्रसिद्ध नाम है। आत्मा की पूजा किस नाम से होती है मालूम है? शालिग्राम नाम से। देवी देवताओं के मंदिरों में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में, बिल्कुल अंगुष्ठाकार काला पत्थर जिसको शालिग्राम कहते हैं वो रहता है जरूर, उसकी भी पूजा होती है मूर्ति के साथ साथ। और उस पर जो तिलक लगाते हैं वो यू शेप या वी शेप ऐसा तिलक लगाते हैं। तो आत्मा की पूजा शालिग्राम नाम से होती है और परमात्मा की पूजा शिव नाम से होती है। शालिग्राम अनेक दिखाएंगे और शिवलिंग केवल एक ही दिखाएंगे। इसका एक बहुत अच्छा यादगार है जम्मू में, जम्मू कश्मीर जाते हैं ना, तो जम्मू में एक मंदिर है रघुनाथ मंदिर, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस मंदिर में जैसे ही एंटर करते हैं वहां बड़े बड़े कमरे हैं और हर एक कमरे में पत्थर के थल्ले बने हुए हैं, स्लैब्स जैसे बने हुए हैं। और उस पत्थर के थल्ले पर या स्लैब्स पर छोटे 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 जैसे पत्थर निकले हुए हैं, अनेकों हैं, लाखों हैं, किसी ने गिनती नहीं की, ऐसे कई कमरे बने हैं। और एक एक कमरे में ऐसे पत्थर के स्लैब्स, उस पर छोटे छोटे जैसे पत्थर निकले हुए और उनकी पूजा होती है। तो करोड़ों शालिग्राम के रूप में है वो। और उसी मंदिर के पास एक अन्य मंदिर है, वो शिव का मंदिर है, एक बड़ा शिवलिंग उस मंदिर में है। अब ये बहुत सुंदर रूप से हम समझ सकते हैं इससे कि आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। जिसकी पूजा शिवलिंग नाम से होती है, परंतु जब हम शिवलिंग कहते हैं तो कई लोग इस लिंग शब्द का भी गलत अर्थ लेते हैं, लिंग को पुलिंग से जोड़ देते हैं। और कई बार इसके लिए कहा जाता है कि स्त्रियों को शिवलिंग करने की शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा निषेध है स्त्रियों के लिए क्योंकि वो पुलिंग से भेंट करते हैं। वास्तव में यहाँ लिंग शब्द का अर्थ कोई पुलिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, लिंग का यहाँ अर्थ है चिन्ह, निशानी, इंग्लिश में कहेंगे सिंबल। जैसे ज्योति का सिंबल है प्रतीक, तो ज्योति को किस प्रतीक में दिखाएंगे? अंगुष्ठाकार, जैसे दीपक जलाते हैं ना, तो दीपक की लौ ऐसे अंगुष्ठाकार प्रतीक के रूप में बन जाती है, ये अंगूठाकार। तो उसी अंगुष्ठाकार प्रतीक को ही शिवलिंग कहा है। महाराष्ट्र में तो कितने सारे ज्योतिर्लिंगम मठ है, 12 ज्योतिर्लिंगम मठ भारत में मशहूर है और ये सब परमात्मा के ही अलग अलग गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। अधिकतर सभी नामों के पीछे ईश्वर जुड़ा हुआ है, ओंकारेश्वर, पापकटेश्वर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, या तो ईश्वर या तो नाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, पशुपतिनाथ, है ना? तो नाथ या ईश्वर ये सब शिव के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। तो ये जितने भी नाम हैं ये सब परमात्मा के गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। परमात्मा ने ये गुण हम आत्माओं को दिए हैं, अनुभव कराए हैं, वो कर्तव्य किया है ईश्वर ने, तभी वो हमारा परम पिता है। जब हम कहते हैं महाकालेश्वर तो वो महाकाल है, काल माना मृत्यु से हमें मुक्त करता है और अपने धाम ले जाता है, वो अमरनाथ है। अमरनाथ का मतलब कभी उसकी मृत्यु नहीं होती है। वो विश्वनाथ है, सारे विश्व का नाथ है। और वो स्वयंभू है, शिव के जितने भी आप मंदिर देखेंगे वो स्वयंभू बताते हैं, वो प्रकट हुए, किसी ने उसको बनाया नहीं। तो शिव शंभू कहते हैं, स्वयंभू, स्वयंभू माना जिसका कोई रचयिता नहीं है, उसी का ही बड़ा मान है। जितने भी पत्थर जो प्रकट हुए बताते हैं, तो परमात्मा कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। इसलिए है ज्योति स्वरूप, पर ज्योति की पूजा कैसे हो, फल फूल कैसे चढ़ाएं, उनकी वो अभिषेक कैसे करें। मैंने तो सब कितनी जगह देखा है, कितने रूप से उस शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। अगर वो ज्योति रूप हो तो कैसे दूध चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, या जो कई चीजें चढ़ाते हैं उसके ऊपर वो कैसे कर सकेंगे। इसलिए उसका प्रतीक चिन्ह ज्योतिर्लिंगम नाम से पूजा जाता है, ज्योति का चिन्ह। और जो भी मंदिर है ये परमात्मा के शिव के गुण और कर्तव्य है। इसीलिए परमात्मा नाम रूप से न्यारा नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम और रूप सबसे न्यारा है, क्योंकि गुण और कर्तव्य वाचक नाम है। हम मनुष्य आत्माएं भी शालिग्राम रूप में है, लेकिन क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो देह पर नाम पड़ता है। और ये देह का जो नाम है ये संज्ञावाचक नाम है, ये गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नहीं होता है। अधिकतर कहाँ होता है, किसी का नाम शांति होगा और देखो तो लड़ती रहती है सबके साथ, और नाम शांति है। किसी का नाम प्रेमावती होगा, देखो तो प्रेम का तो एक गुण भी नहीं है, अंश भी नहीं है उसके अंदर, नफरत ही भरी हुई है, नाम प्रेमावती है। कईयों के नाम लक्ष्मी होते हैं परंतु बिचारी भीख मांग रही है, नाम लक्ष्मी है। तो मनुष्यों के जो नाम है वो संज्ञावाचक है। एक भाई था, उसका नाम था हसमुख भाई, लेकिन उसकी शक्ल देखो तो सारा दिन रोता ही रहता है, ऐसा रोने जैसी शक्ल थी, और नाम था हसमुख भाई। तो मैंने उसको एक दिन कह दिया, भैया आपका नाम तो कितना अच्छा हसमुख भाई, तो हंसो मुस्कुराओ, मुस्कुराने में खर्चा तो कुछ नहीं लगता है, कोई मेहनत भी नहीं लगती है, मेहनत लगती है मुस्कुराने में। तो मैंने जब कहा मुस्कुराते क्यों नहीं हो, नाम तो आपका कितना अच्छा है, हसमुख को याद करो तो मुस्कुराएगा चेहरा। कहता है क्या करो बहन जी, माँ बाप ने ऐसी शक्ल दे दी है। तो नाम भी तो माँ बाप ने ही दिया, शक्ल भी तो माँ बाप ने शक्ल ऐसी थोड़ी दी थी जो मुस्कुरा नहीं सकते हो। परंतु नाम से भी प्रेरणा कहाँ लेते हैं लोग, ये जितने भी नाम मिलते हैं ताकि उनसे प्रेरणा ले सके। पश्चिमी संस्कृति में प्रेरणा देने वाले कोई नाम नहीं होते हैं, मिस्टर ब्राउन, मिस्टर ब्लैक, मिस्टर फलाना, हा? ऐसे ही नाम होते हैं। पर भारत की संस्कृति में नाम के पीछे प्रेरणा होती है, उसका अर्थ होता है। कोई भी अपने बेटी का नाम केकई नहीं रखेगा, केकई रखेंगे क्या, कौशल्या रखेंगे, देवकी रखेंगे, पर केकई कोई नहीं रखेगा। कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखेगा, कंस नहीं रखेगा, कृष्ण रखेगा, राम रखेगा, क्योंकि ये हमारे ही पूर्वज थे, देवी देवताएं थे, उनके ही हम वंशज हैं। तो इसीलिए हम जो भी नाम उच्चारण करते हैं वो आज की दुनिया में तो ये संज्ञावाचक ही नाम रह गए हैं, वो गुण नहीं होता। लेकिन परमात्मा का नाम गुण और कर्तव्य वाचक है। शिव शब्द में जितने भी अर्थ हैं ये सब परमात्मा के ही गुण और कर्तव्य हैं। और जितने भी परमात्मा के गुण और कर्तव्य, अगर उन सभी को एक शब्द दो, वो शब्द है कल्याण। परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, और कल्याणकारी होने के कारण शिव उनका नाम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कल्याण। शिव के कई और भी अर्थ है, जैसे कहीं पर बहुत अशांति है, बहुत आवाज है, बहुत लड़ना झगड़ना, गाली गलौज, मतलब बहुत कुछ वातावरण बड़ा टेंस वाला है, तो क्या कहेंगे, अरे शिव शिव बोलो, शिव शिव बोलो, कहते ना। तो शिव शिव क्यों बोलो, शिव माना शांति, शिव माना पवित्रता। छोटे बच्चे को कहते हैं ये शिव स्वरूप है, यानी इतना पवित्र स्वरूप है, जैसे शिव कितना पवित्र है। शिव को भोलानाथ कहा गया है क्योंकि बहुत जल्दी वो प्रसन्न होता है। थोड़ा भी शिव को याद करो, उनका ध्यान करो, वो तो आपको मालामाल कर देगा। कहा जाए ना, शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक दूर, ऐसे कहा गया है। शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद खोले, तो शिव वो ज्ञान का सागर है। परंतु जब हम शिव कहते हैं तो हमारा अभिप्राय शंकर से नहीं है। अब ये थोड़ा आपको हम बताना चाहेंगे, जब हम कहते निराकार है, निरंजन है, निर्गुण है, ज्योति रूप है, बिंदु में सिंधु है, कल्याणकारी है, ये किसके लिए कहते हैं? कई लोग समझते हैं जब हम शिव कहते हैं शायद शंकर की बात कर रहे होंगे, लेकिन शंकर को भी महादेव कहते हैं, देव देव महादेव, और शिव को कहेंगे देवों का देव। ओम नमो शिवाय जब कहते हैं तो उस ज्योति स्वरूप को याद करते हैं। शंकर को जब याद करेंगे तो क्या कहेंगे, शंकर देवताए नमः, पर ओम नमो शिवाय। शंकर को भी सदा ध्यान की अवस्था में दिखाया गया है। जब भी देखो, कहीं भी शंकर की मूर्ति देखो, ध्यान मग्न, कैलाश पर्वत पर चीते की खाल पर बैठा हुआ तपस्या कर रहा है, तो शंकर किसका ध्यान कर रहा होगा, कभी ये सोचा है? हम जब छोटे थे तो हमने एक बार अपनी माँ से पूछा कि शंकर किसका ध्यान कर रहा है, तो उस समय ये ज्ञान हमें नहीं था, माता जी को भी ज्ञान नहीं था, तो उसने कहा वो तो राम का ध्यान कर रहा है। तो मैंने कहा वो राम का ध्यान कर रहा है, तो राम जब सोचा तो माना वही श्री राम, वही बुद्धि में आया तो उसका ध्यान कर रहा है। फिर मैं रामेश्वर गई थी तो रामेश्वर में हमने देखा श्री राम भी शिव का ध्यान कर रहा है, तो मैंने कहा श्री राम किसका ध्यान कर रहा है, कहा वो शिव का ध्यान कर रहा है, तो श्री राम शिव का ध्यान कर रहा है, शिव राम का ध्यान कर रहा है, तो क्या दोनों एक दो का ध्यान कर रहे हैं? अब उस समय तो हमको समझ में नहीं आया, लेकिन जब ये ज्ञान हमें मिला तब पता चला कि जब हम कहते श्री राम तो त्रेता युग का श्री राम, जिसको कहा दशरथ का बेटा, वो विष्णु का साकार रूप जरूर है। जितने भी देवी देवताएं हैं ये सब विष्णु के साकार रूप हैं, श्री कृष्ण श्री राम, लेकिन परमात्मा तो विष्णु का वीर पिता है, रचयिता है। तो सदा शिव जब कहा ब्रह्मा देवताए नमे, विष्णु देवताए नमे, शंकर देवताए नमे, ओम नमो शिवाय, तो वो शिव परमात्मा त्रिदेव है, तीनों देवताओं के भी रचयिता है। अब जब हमने उस रूप से समझा तो श्री राम भी ने भी शिव का ध्यान कर श्री राम पद को प्राप्त किया, या वो शक्ति प्राप्त की, तो देवताओं ने भी शिव का ध्यान कर देव पद को पाया। तो शंकर भी किसका ध्यान कर रहे हैं, उसी निराकार ज्योति स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। कई उसको राम सब कहते हैं, रामायण में आता है चार प्रकार का राम है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जो सकल पसारा ब्रह्मा जिसने सृष्टि रची उसको भी राम के रूप में याद करते हैं, ब्रह्मा को सकल पसारा दुनिया रची, एक राम जो घट घट वासा आत्मा राम, आत्मा भी राम के रूप में मानते हैं भाई, परमात्मा का अंश रूप में, पर एक राम जो जग से न्यारा, तो वो जग से न्यारा राम, जब वो कौन, श्री राम अलग है वो देवता के रूप में, पर हे राम जब महात्मा गांधी को गोली लगी उसने कहा हे राम, तो वो राम कौन, किस राम को याद किया? त्रेता युग का राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, ये तो श्री राम, उसने तो राज्य किया। परमात्मा तो इस संसार में राज्य करता ही नहीं है, वो तो अकर्ता भोगता है, श्री कृष्ण ने भी राज्य किया इस दुनिया में। तो जब हम ये बातें समझते तब महसूस होता है कि परमात्मा तो सबसे न्यारा है। इसलिए जब हम शिव कहते हैं हमारा अभिप्राय शंकर से भी नहीं है, उनका भी आकारी स्वरूप है, वो भी शिव का ध्यान कर रहे हैं, तो हमें किसका ध्यान करना है? उसी ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा का, जो देवों का भी देव है, परम आत्मा है। तो नाम भी सबसे न्यारा कर्तव्यवाचक नाम। आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा है, दोनों का एक जैसा रूप, इसलिए आत्मा का भी साक्षात्कार ज्योति रूप में होगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी ज्योति रूप में होगा। तुरंत नहीं पता चलता ये आत्मा का साक्षात्कार हुआ या परमात्मा का हुआ। कईयों को भक्तों को होता है ज्योति का साक्षात्कार, परंतु अंतर बहुत है। क्या अंतर है? हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, परमात्मा इस चक्र में नहीं आता, उनकी आत्मा सदा ही सुरक्षित है। हम आत्माएं अपने आप को भूल जाती है, परमात्मा कभी नहीं भूलता। वो अगर भी अपने आप को भूल जाए तो हमको फिर कौन आके याद दिलाए? वही तो याद दिलाएगा जो चक्र से परे है। इसलिए अजन्मा कहा। तो रूप को भी समझा, नाम को समझा, गुण को समझा। आत्मा और परमात्मा की गुणवत्ता एक ही है, लेकिन संख्या में अंतर है। इसीलिए आत्मा शांत स्वरूप तो परमात्मा शांति का सागर, इसलिए कह दिया अंश। पर अंश उस रूप में नहीं कि उसके टुकड़े हम निकल आए, या ज्योति में से ज्योति निकली फिर ज्योति ज्योति में जाके समाएगी, नहीं। आत्मा परमात्मा अनादि और अविनाशी सत्ता है, कभी पैदा नहीं हुए। तीन शक्तियां अनादि और अविनाशी है, आत्मा परमात्मा और प्रकृति, जिसको पुरुष परम पुरुष और प्रकृति कहा है। और खेल दो के बीच में है, पुरुष और प्रकृति के बीच में खेल है। परम पुरुष परमात्मा इस खेल में बीच में नहीं आता, उनका काम अंत में होता है, जिसका और विस्तार आपको अगले सत्रों में बताएंगे। परंतु दो के बीच में जो खेल है, उस खेल में कभी एक विजयी तो कभी दूसरा विजयी। खेल में तो एक ही पक्ष थोड़ी विजयी होता है, कभी एक कभी दूसरा। तो कभी पुरुष विजयी है, यानी आत्मा विजयी है, प्रकृति सेवक है, तो संसार सतयुग है। लेकिन आत्मा प्रकृति के साथ रहते रहते जन्म लेते, देह छोड़ते, देह लेते, धीरे धीरे आत्मा खुद को भूल जाती है और अपने आप को प्रकृति के साथ आइडेंटिफाई करने लगती, शरीर समझने लगती, तो प्रकृति मालिक हो जाती है। तो जब प्रकृति मालिक हो गई तो फिर पुरुष उसके अधीन हो जाता है, तो ये संसार कलयुग बन जाता है, नर्क बन जाता है, जो आज की स्थिति है। परंतु फिर से प्रकृति को सेवक बनाए और पुरुष आत्मा को मालिक बनाए, उसके लिए परम पुरुष को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता। इसीलिए परमात्मा के महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। जब जब संसार में धर्म की ग्लानी होती है तब तब मैं आता हूँ और आकर के अधर्म का नाश करता हूँ और सत धर्म की स्थापना करता हूँ। तो प्रश्न उठता है, परमात्मा कहाँ से आता है, वो है कहाँ? जब हम किससे पूछते भगवान कहाँ है, तो जैसे बताया कई प्रकार के मंतव्य हैं। कोई कहेगा वो तो दिल में है, हनुमान के लिए कहेंगे राम तो उसके हृदय में था। कई चित्र दिखाते हनुमान हृदय फाड़ कर दिखाता है, देखो राम मेरे दिल में बैठा हुआ है। कोई कहेंगे वो तो सब जगह है, जैसे मीराबाई कृष्ण की भक्ति करती थी, वो सब जगह कृष्ण को ही देखती थी, जहां देखती हो वहां तू ही तू, गिरधर तू ही तू, क्योंकि उनकी आंखों में वो बसा हुआ था। पर किसी के दिल में बसा हुआ है, किसकी आंखों में बसा हुआ है, किसी के रोम रोम में बसा हुआ है, कण कण में बसा हुआ है। ये जो कुछ भी हमारी भावना है वो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची भावना है, क्योंकि हम कभी भी भगवान को अपने से दूर न करें। कई लोग हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानते हो। हम कहते हैं क्यों नहीं मानते, भावनात्मक स्थिति में तो हम बहुत मानते हैं, हम कहां भी जाएंगे कभी भी अपने को अकेला नहीं समझते है ना। कई लोग अकेले जाते हैं तो डरते हैं, बाप रे अकेले जाऊंगी, अकेले जाऊंगी, कैसे अकेले जाऊंगी, हाँ कोई साथ में चाहिए। हम लोग जाते कभी अकेले, कभी डरते नहीं। लोग हमको कहते बहन जी अकेले नहीं जाओ, किसको ले जाओ। हम कहते क्यों ले जाऊं, शिव बाबा हमारे साथ है। कौन हमारे साथ है? शिव बाबा। तो शिव बाबा किसको कहते हैं? परमात्मा को। परमात्मा हमारे साथ है, डरने की क्या बात है, है? वो गीत है ना, भगवान हमारा साथी है तो डरना किस बात का। तो इसीलिए परमात्मा को हर वक्त हम अपने साथ रखते हैं, फिर चाहे दिल में रखें, चाहे आंखों में रखें, चाहे रोम रोम में रखें, या सब जगह उनके साथ ही हम हैं, हम उनको अपने से अलग करें क्यों। लेकिन ये भावनात्मक स्थिति है। तो जितना हम सर्वव्यापी मानते हैं, दुनिया में कोई भी मानता होगा, भले कहते हैं सब जगह। अच्छा उनसे पूछो, आप कहते हो सब जगह तो क्या कर रहा है सब जगह, विवेक जोड़ना होगा ना, सब जगह है तो क्या कर रहा है। तो फिर कई मान्यताएं, वही तो सब कुछ करता है। अब वही सब कुछ करता है तो चोरी भी वही करता है, खून भी वही करता है, डाका भी वही डालता है, हा? दुनिया में इतना अशांति भी वही फैला रहा है। फिर भगवान को बुलाते क्यों, हे प्रभु आके शक्ति दो, शांति दो, हा? अधर्म का नाश करो, वही सब कुछ कर रहा है। तो फिर ये क्यों कहते हैं आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, जो करेगा सो भरेगा। अगर वही भगवान ही सब कर रहा है तो वही भोगे ना, फिर हम क्यों भोगे। उनकी शक्ति काम कर रही है सब कुछ, तो ये हाथ भी उसकी शक्ति से उठती है, उठता है, फिर ये किसी को मारा तो उसकी शक्ति है, तो सजा भी तो वही भोगे ना, हमने थोड़ी किया। लेकिन नहीं, ये भावनात्मक स्थिति बहुत ऊंची है। ग्रंथ में आता है करण करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब वही करण करावन हार है। अब इसको भावनात्मक रीति से लेना चाहिए। अगर सिद्धांत के रीति से लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा कि वही सब कुछ कर रहा है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर दूसरी ओर ये भी है कि जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो कौन करता है और भोगता? आत्मा। आत्मा की शक्ति से उठा, परमात्मा की शक्ति से नहीं उठा। अगर आत्मा की शक्ति के बजाय परमात्मा की शक्ति से उठा और किसकी हत्या की तो परमात्मा की शक्ति से हत्या हुई, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो परमात्मा का नाम बदनाम कर रहे हैं हम। कई फिर कहते नहीं नहीं ये तो आत्मा की शक्ति है, जो करेगा सो भरेगा। अच्छा फिर भगवान क्या कर रहा है सब जगह? तो कई फिर दूसरा अर्थ लेते हैं, कहते हैं वो सब देखता है, वो कुछ करता नहीं है, केवल देखता है कि कौन क्या क्या कर्म कर रहा है, क्योंकि उसको हमें सजा देनी है। तो भगवान केवल सजा देने वाला ही है क्या? भगवान से कई कहते डरते रहो क्योंकि वो देख रहा है, सजा देगा। तो देख रहा है सजा देगा, तो तभी उसको पता चलेगा, देखने से ही पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वो तो सब तीनों कालों को पहले से ही जानता है, देखने से थोड़ी पता करता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो सब कुछ जानता है, भविष्य भी जानता है, देखने से तो केवल वर्तमान ही जानेगा। इसीलिए परमात्मा कहां है इसका सिद्धांत हमें समझना होगा। ईश्वर से मुझे प्रेम है, तो जिससे प्रेम होता है उसके लिए दो जगह होती है, एक होता है दिल, दूसरी होती है आंखें। जैसे किसी से प्यार है तो क्या कहेंगे, एक बच्चे से माँ को बहुत प्यार है तो माँ क्या कहेगी, ये मेरा जान जिगर है, या कहेगी मेरी आंखों का तारा है ना। ये कहावत है, ये मुहावरे हैं। तो आंखों का तारा है, जैसे आंख में तारा है तो आंख में मानो रोशनी है, अगर ये तारा नहीं है माना आंख नहीं है, दिखाई नहीं देता है। तो बच्चा उस माँ के लिए तारे के समान है, बहुत ही कीमती है, जैसे आंखें कीमती है, आंखें हैं तो जहान है। तो ये जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इनमें बड़ा राज है। तो किससे बहुत प्यार है तो हम उसको कहाँ स्थान देंगे, दिल में। बहुत प्यार है तो कहेंगे ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, सॉफ्ट कॉर्नर है दिल में। लेकिन दिल में अगर भगवान को जगह दी तो याद रखना, हमारी बात समझ लेना कि अगर दिल को में भगवान को जगह दी तो फिर और किसको नहीं देना, क्योंकि अनेकों को दिल दे देंगे तो क्या होगा, दिल कितनों को देनी होती है। अगर अनेकों को दिल देंगे तो परिणाम क्या होगा, वो गीत है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। अनेक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा हमारा दिल अगर अनेकों को दिल दे बैठे, और दूसरे किसी को दिल दिया तो दिल दिया दर्द लिया। कहानी है ना, दिल देने वाले दर्द ही लेते हैं, दिल के टुकड़े हो जाते हैं। तो दिल वास्तव में ये प्यार का सूचक है। तो भगवान से अगर प्यार किया, उनको दिल दिया, तो फिर ये दिल तो इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी मेरा दिल मजबूत होगा, हम डरेंगे नहीं, भगवान मेरे दिल में है। तो ये भावना की स्थिति बहुत ऊंची है, पर सिद्धांत क्या है, सिद्धांत अनुसार अगर हम माने तो हम क्या कहेंगे, हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर जाना है, ऐसे ही कहते ना, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। तो आत्मा तो परम धाम की वासी है, और तो भगवान का घर कहाँ होगा, वही परम धाम है, वो ऊंचे से ऊंचा भगवान है। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो परमात्मा का धाम भी तो सबसे ऊंचा होगा, इसलिए जब दुखी होते हे भगवान बुलाओ, तो भगवान कहाँ बुलाए, अपने घर में बुलाए ना। पर जो इस घर में हम जाना चाहते हैं वो भगवान का भी घर है तो हमारा भी घर है। बच्चे का घर और बाप का घर अलग होता है क्या, भले बाद में जाके बाप अलग हो जाता है या बच्चा अलग हो जाता है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो बाप का घर ही तो बच्चे का घर होता है ना, कि नहीं, कि दूसरा होता है। तो हम आत्माओं का वही घर है जो हमारे पिता परमात्मा का घर है, जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं। इसलिए हम मोक्ष की कामना करते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं, यानी वापस घर जाना चाहते हैं। लेकिन दुखी होकर के घर जाने के लिए भगवान को मत बोलो, मत कहो कि भगवान उठा लो। अपने घर में जाने लिए निमंत्रण नहीं चाहिए, चाहिए क्या आपको? अब अपने घर आप जाएंगे दो तीन दिन के बाद तो पहले घर से निमंत्रण मांगेंगे कि निमंत्रण दो तो मैं घर आऊं, वो तो आपका अपना घर है, वहीं से तो आप आए हो, तो वहीं से आए हो तो वहीं जाना है ना, निमंत्रण क्यों मांगते हो भगवान से कि हमें बुलाओ। एक सेकंड में आत्मा मन के द्वारा उसी घर में पहुंच जाए, वो मेरे पिता परमात्मा का भी घर है। तो भावनात्मक स्थिति बहुत सुंदर है, कभी नहीं ये सोचो कि मैं करता हूं, ये सोचो परमात्मा की शक्ति मुझसे करा रही है। इससे क्या लाभ होगा, ये भावनात्मक स्थिति रहेगी कि उनकी शक्ति मुझसे करा रही है, उसमें अभिमान नहीं आएगा कि मैंने किया मैंने किया। कई लोगों को अभिमान आता है ना, देखो मैंने किया, मेरे मैं नहीं होता ना ये काम हो ही नहीं सकता था, मेरे बिना काम नहीं हो सकता, मैं ही कर सकता हूँ, मैं था इसीलिए सफलता मिली, मैं नहीं होता ना तो सफलता नहीं मिलती, तो बड़ा अभिमान चढ़ जाता है। लेकिन नहीं, मैं तो निमित्त था, ये तो ईश्वर की शक्ति थी, उसने मेरे हाथ से करवाया, मैंने कुछ नहीं किया। तो अगर कार्य में सफलता मिली तो अभिमान नहीं आएगा, और अगर असफलता मिली तो भी दुख नहीं होगा। अभी क्या होता है, असफलता मिलती तो दुख होता है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना मैंने परिश्रम किया, कितना मैंने समय दिया, शक्ति दी, और ये परिणाम आखिर क्या फायदा हुआ? तो दुखी होकर रोने लगते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो समय कौन है? जो हुआ अच्छा हुआ, मेहनत की उसका फायदा तो ये हुआ कि अनुभव मेरा बड़ा। इसीलिए कहा कर्मणे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचनम। कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, ये आत्मा को कहा परमात्मा ने, कर्म पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, तुम मालिक हो कर्म करते समय, लेकिन फल इस पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो संचित हो गया है, जरूर एक दिन प्रत्यक्ष होगा, चिंता की बात नहीं है, तुरंत फल की इच्छा मत रखो। तो कर्म करने वाली शक्ति कौन है? आत्मा। परमात्मा तो करता है, परंतु हाँ परमात्मा का कर्तव्य क्या है इसको भी समझना है। परमात्मा क्या करता है क्या नहीं करता है ये समझना है, ये नहीं कि सब कुछ वही करता है। आत्मा की शक्ति अपनी है, प्रकृति की शक्ति अपनी है, परमात्मा की शक्ति अपनी है। परमात्मा का कार्य केवल एक ही समय होता है जबकि संसार में अधर्म की अति हो जाती है, तब अधर्म का नाश करने और सत धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो कहां से आता है? उसी परम धाम से। और हम इस निश्चय से कहते हैं कि अब वही समय अधर्म का आ चुका है। आपको बताएंगे आगे कि कैसे ये अधर्म का समय चल रहा है और परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं इस सृष्टि के परिवर्तन का, और उसके लिए कह रहे हैं हे आत्माएं अब मुझे याद करो। इस राजयोग के द्वारा हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे और आत्मा वापस अपने धाम चली जाएगी। तो इस समय हम मन से अपने धाम में जाएं, वो मेरे पिता का भी घर है, इसलिए परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, पुकारने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हे प्रभु शक्ति दो, शांति दो, दया करो, हम ऐसे पुकारने की आवश्यकता नहीं है। बस दिल से मन से परमात्मा को प्यार से याद करो। कैसे याद करेंगे? तीन बातों की समानता बुद्धि में रखकर याद करेंगे, क्योंकि एक जैसा स्वरूप है, एक जैसे गुण हैं और एक ही धाम है। इसीलिए तीन बार शांति शब्द का प्रयोग होता है ओम शांति में। शांति पाठ जब करते हैं ना तो अंत में क्या कहते हैं? ओम शांति शांति शांति। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मैं वो आत्मा हूँ जिसका स्वभाव शांति है, जिसका पिता शांति का सागर है, जिसका धाम शांति का धाम है। तो जिसका स्वभाव ही शांति, जिसका पिता शांति का सागर, जिसका घर शांति का धाम, वो अशांत हो सकता है? तो शांति हमसे कितनी दूर है? कितनी दूर है? कितनी दूर है? हमारे पास है। और कैसे हम उस तक पहुंचेंगे? हमारे पास है तो एक सेकंड की दूरी है, एक सोच की दूरी है केवल। और वो सोच क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी और शांति के सागर परमात्मा की संतान। और जैसे ये संकल्प हम करेंगे तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अशांत नहीं कर सकेगी। ये समझ लो, चैलेंज है कि अगर ये सोच हमारे मन में है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम का वासी, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे अशांत नहीं कर सकेगी। और इसके विपरीत अगर ये सोच नहीं है तो दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे शांति नहीं दे सकती है, ये भी समझ लो। चाहे मेरी कितनी भी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करे, सब कुछ मुझे दे दे, लेकिन शांति नहीं दे सकेंगे। और अगर ये सोच है तो दुनिया की सारी चीजें जो कुछ मेरे पास है सब लूट भी लेना, मेरी शांति नहीं लूट सकता है। लूट सकेगा शांति, वो तो मेरी अपनी चीज है। जैसे गुलाब में फूल में सुगंध है, भले वो कुमला जाए, भले कुछ भी हो जाए, सूख जाए, परंतु उसकी सुगंध थोड़ी जाएगी, जाएगी क्या? जाएगी, अगर वो सच्ची रूहे गुलाब है तो। तो आत्मा के अंदर जो गुण निहित है वो मेरी अपनी चीज है, इसको कोई नहीं छीन सकता। तो कई लोग कहते हैं ना, इसने मेरी शांति छीन ली, अब ये भी अज्ञान है, या इसने मुझे शांति दी, नहीं, न कोई दे सकता है न ले सकता है, ये तो मेरी अपनी चीज है। तो राजयोग में हम क्या करते हैं, अपने मन को ऐसी उड़ान दे करके बुद्धि के द्वारा उस घर में पहुंच जाते हैं और महसूस करते हैं उस बेहद घर में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा अपने पिता परमात्मा के सामने हूँ। अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा उस परम ज्योति के सामने हूँ, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में सिंधु है, और मेरे चारों ओर उस सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति है, क्योंकि इस धाम में और कोई कर्म नहीं, न जन्म है, न मरण है, न कर्म है, न फल है, न पाप है, न पुण्य है, न सुख है, न दुख है, न दिन है, न रात है, न नर्क है, न स्वर्ग है, वो सब इस संसार में है, इस पंच तत्वों की दुनिया में है, साकारी दुनिया जिसे कहते हैं। परमात्मा को क्या कहते हैं? त्रिलोकी नाथ। तो त्रिलोक कौन से हैं? कई लोग समझते हैं सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, भूलोक है, ये त्रिलोक समझते हैं, या कहेंगे आकाश लोक है, पाताल लोक है, पृथ्वी लोक है, या कहेंगे स्वर्ग लोक है, नर्क लोक है। नहीं, स्वर्ग नर्क आकाश पाताल पृथ्वी सूर्य चंद्र ये सब एक ही लोक के अंदर है, जिसको हम साकारी दुनिया कहते हैं, जो पंच तत्वों में है, उसमें परिवर्तन है, लेकिन उसके पार जो है वो पांच तत्वों से परे छठा तत्व है, और परमात्मा उसी अखंड ज्योति महतत्व का रहवासी है। कई लोग परमात्मा शिव और ब्रह्म दोनों के अंतर को नहीं समझते हैं, तो क्या कहेंगे? शिवो हम, अहम ब्रह्मास्मि। वास्तव में शिव परमात्मा का नाम है और ब्रह्म आत्माओं का घर है, परमात्मा का घर है, वो तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है, तो वो भी एक मह ज्योति का तत्व है, जो बेहद ज्योति है, स्थिर ज्योति है, स्वयं प्रकाशित ज्योति का तत्व है। लेकिन शिव तो मेरे परम पिता है, वो तो चेतन है, जिसके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है, शक्तियां भरी हुई है, गुण भरे हुए हैं। वो ब्रह्म तत्व तो एक बेहद प्रकाश का तत्व है। अब इस अंतर को जब समझा तब हम महसूस करते हैं कि शिव के साथ तो मेरे सर्व संबंध है और ब्रह्म तो मेरा घर है, उस घर में जाने का मेरा अधिकार है, और शिव से सर्व संबंध जो आज टूट गए हैं उनको उनसे फिर से जोड़ने का भी अधिकार है। जैसे दुनिया में अधिकार मांगते हैं ना, ये आध्यात्मिक अधिकार है हमारे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये गुण मेरे से मांगो नहीं, ये आपका अधिकार है। तभी तो कहावत प्रसिद्ध हो गई, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हम शांति की भीख मांगते आए हर जन्म, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, लेकिन लगता है कि भीख भी नहीं मिली। कम से कम एक भिखारी भीख मांगता है तो एक थोड़ा तो दे देंगे ना, दया करके, चलो भीख मांग रहा है दे दो, पर ये तो भीख भी नहीं मिली, अशांति के अशांति रह गए। तो जरूर कारण क्या है? कनेक्शन जोड़ा ही नहीं। अब हम अचानक देखें या लाइट चल रही, माइक है, सब चल रहा, अचानक अंधेरा हो जाए, हम कहेंगे क्यों अंधेरा हो गया? तो कारण क्या है कि फ्यूज उड़ गया होगा अंदर जो मीटर है। हम ढूंढते रहेंगे क्या हुआ क्या हुआ, कैसे लाइट आएगी, वो फ्यूज को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो फिर से आएगी। पावर हाउस से तो करंट है, दूसरे हॉल में तो जल रही है, यहाँ क्यों नहीं है? तो परमात्मा से तो शक्ति मिल रही है, पर हम लेवे ना, हम कैसे ले? ये अगर ये देह अभिमान रूपी रबर चढ़ा हुआ है तो ले नहीं सकेंगे, मन भटकेगा, क्योंकि देह समझा तो देहधारी याद आएंगे। इसलिए राजयोग की परिभाषा हम दूसरी क्या बताते हैं, राजयोग अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है। और स्मृति अर्थात याद, और ये याद करना, याद आना, ये मन का काम है। इसीलिए भगवान के महावाक्य, इस मन को मेरे में लगाओ, और मन को लगाना माना संकल्पों के द्वारा लगाओ। कोई मंत्र आपको नहीं देंगे या माला नहीं देंगे फिरने के लिए, या कोई सामने चित्र या मूर्ति नहीं देंगे, परंतु मन के अंदर हमें ये चिंतन करना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ आत्मा, पिता परमात्मा कौन है, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या है। और जैसे एक बच्चा अधिकारी बनकर पिता की प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, इसी प्रकार मैं आत्मा भी परमात्मा के गुणों की अधिकारी हूँ, शक्तियों की अधिकारी हूँ। तो मैं ये नहीं कहूंगी हे प्रभु शांति दो, नहीं, अब भाषा मेरी बदल जाएगी, परमात्मा से बातें जरूर करूंगी, आपको विस्तार आगे बताएंगे, लेकिन भाषा क्या बदल जाएगी, ये नहीं कि हे प्रभु शांति दो, लेकिन शिव बाबा मन की आंख उस परमात्मा को देखे जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु है, उसे शांति की किरणें उस स्रोत से निकल रही है। शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। ये नहीं शांति दो, कैसे देगा शांति, कैसे पता चलेगा कि शांति मिली या नहीं मिली, ये तो मन की स्थिति है। जैसे हम प्रकृति में भी देखते हैं, सूरज के सामने खड़े हो जाते हैं तो सूरज को कहते थोड़ी हैं, हे सूरज मुझे प्रकाश दो, कहते हैं क्या, क्या करते हैं हा? सूरज से प्रकाश कैसे लेते हैं, अपना मुंह उनके सामने खड़ा कर देते हैं, सूरज की किरणें मेरे मुंह पर पड़ती है, अनुभव होता है कि हड्डियों में जा रहा है सूरज की किरण, विटामिन डी मिल रहा है ना, ताकत आ रही है हड्डियों में, सूरज की किरणें मिलती है, प्रकाश मिल रहा है, मांगते थोड़ी है। आप सागर के किनारे जाकर सागर की लहरों को कहते हो क्या, हे सागर मुझे ठंडी हवा दो, कहते हो क्या, क्या करते हो, ठंडी हवा खाते हो सागर के किनारे जाके ठंडी हवा अपने आप मिलती है, पंखे को कहना थोड़ी पड़ता है ठंडी हवा दो, कूलर को कहना थोड़ी पड़ता है, वो तो अपना काम कर रहा है, मुझे लेना है। सूरज की किरण आ रही है, मैंने खिड़की बंद कर दी तो सूरज का क्या दोष, मैंने खिड़की बंद कर दी है तो किरण कैसे आएगी, कमरे को बंद कर दिया तो हवा कैसे आएगी, खोलो। इसीलिए कहते हैं ये द्वार खोलो, और अंतर के द्वार में परमात्मा को पहचानो। द्वार खोलो माना ये नौ द्वार कहते बंद करो, वो दसवां द्वार खोलो। भाव है कहने का कि इस शरीर के अंदर शांति नहीं है, और इस शरीर को तो काम चाहिए, जितना शरीर को काम देंगे ना उतनी शरीर की तंदुरुस्ती बढ़ेगी। शरीर को सुस्त रखेंगे, काम नहीं देंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो शरीर सुस्त हो जाएगा और बीमारियां आ जाएगी। इसलिए शरीर को जितना काम दो उतनी तंदुरुस्ती बढ़ेगी, मेहनत करो, और मन जितना शांत रखो उतनी शक्ति बढ़ेगी। जितनी सुविचार करो, श्रेष्ठ विचार करो, उतनी शक्ति बढ़ेगी। नकारात्मक विचार करने से शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि बहुत फास्ट चलते हैं। शुद्ध विचार धीरे चलते हैं, अशुद्ध विचार बहुत तेज चलते हैं। गुस्से का विचार कितना जल्दी आता है, और मैं शांत स्वरूप हूं कितना धीरे से आएगा। पर कई बार मैं शांत स्वरूप हूं का एकदम गुस्सा आ जाएगा उसी वक्त, तो वो शांति की शक्ति एक सेकंड में खत्म कर देंगे। जैसे अमृत के घड़े में एक बूंद भी जहर की पड़ जाए तो क्या हो जाता है, अमृत जहर बन जाता है। एक बूंद ही उस अमृत को जहर बना देती है। तो परमात्मा की याद एक पारे की तरह से, पारा होता है ना, खिसक जाता है, हाथ में आता नहीं है। इसीलिए मन इतना चंचल है, व्यक्ति वस्तु वैभव याद आते रहते, क्योंकि देह का अभिमान है। मन भटकता है। अब इसको तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, जैसे तार को जोड़ना है कॉपर वायर से, कॉपर से, तांबे से, फ्यूज से जोड़ते ना, तो रबर को निकालते हैं। तो मैं आत्मा भी इस देह अभिमान से अपने आप को दूर करूं। तो आत्मिक स्मृति के लिए, आत्म अनुभूति के लिए तीन कदम बताए थे सुबह। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, ये मेरा टेम्पररी घर और ये मेरा परमानेंट घर। इसी प्रकार परमात्मा का भी वही धाम है। तो आत्मिक स्थिति का अनुभव करने के लिए तीन कदम क्या है, पहला है कि मैं आत्मा यहाँ हूँ, दूसरा कदम है कि मैं आत्मा किन गुणों की स्वरूप हूँ, तीसरा कदम है कि मैं आत्मा कहाँ की वासी हूँ। अब जब तीन ये कदम जाने तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की विधि भी जान जाएंगे, उनके स्वरूप को पहचानेंगे, उनके गुणों को पहचानेंगे, उनके धाम को पहचानेंगे, और आत्मा परमात्मा से कैसे संबंध जोड़ेगी, अंदर ही अंदर भगवान से बातें करो। शिव पिता, आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। और जैसे ही कहा मैं शांत स्वरूप हूँ, उसी समय ऐसे लगेगा जैसे मैं शांत स्वरूप एक बिंदु सिंधु में समा गई, शांत स्वरूप शांति के सागर में समा गई। इसी कोई शास्त्रों में कह दिया आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, या ज्योति ज्योति में समा गई। तो ये स्थूल ज्योति की बात नहीं है जो समा जाए ज्योति में, ऐसे समा गई बिंदु सिंधु में, बूंद सागर में, ज्योति ज्योति में, तो उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा अपने आप का। लेकिन आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, आत्मा तो अनादि अविनाशी है। मैं सदाई थी हूं और रहूंगी, केवल पाठ बजाने के लिए वस्त्र बदली करती हूं, फिर घर जाती हूं, फिर आना है सृष्टि पर, इसका और अधिक आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम फिर से वो अनुभूति करेंगे, ठीक है। और उस अनुभूति के लिए अंतर मन में बहुत खुशी लाओ कि मैं सच्चा धन कमाने बैठा हूं, और दूसरा अंदर में नशा चढ़ाओ कि जिसको सारी दुनिया याद करती है, जिसको धर्म पिताओं ने भी याद किया, वो मेरा परम पिता है। मैंने अब उसे पहचान लिया है, दुनिया उसको ढूंढ रही है, पुकार रही है, भटक रही है उसको पाने के लिए, और मैंने पहचान लिया है। उसके साथ मेरे सब संबंध हैं, उनसे मुझे सर्व प्राप्ति होती है। अब मुझे सब संबंध उनसे ही जोड़ने हैं, वही मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन। आत्मा सजनी है तो वो साजन है, आत्मा पार्वती है वो शिव है, आत्मा सीता है वो राम है। अगर इस रूप से भी हम समझें तो आत्मा निराकार परमात्मा भी निराकार, उस स्वरूप में आत्मा परमात्मा का अनादि अविनाशी रिश्ता है। हर जन्म में आत्मा ने साकार चोला लिया लेकिन निराकार को भूल नहीं सकी है, पर देह अभिमान के कारण उनसे दूर हो गई है। अब इस देह अभिमान को तोड़ो और आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा से सब संबंध जोड़ो। तो चलिए, अंतर में वो खुशी और नशा ऐसा चढ़ाएं कि अन्य सब नशे फीके हो जाएं। ये ईश्वर का नशा इतना शक्तिशाली नशा है। ये लाल प्रकाश हमें संकेत देता है कि अब और सब बातों से बुद्धि हटाओ, किनारा करो, फुल स्टॉप लगाओ, ब्रेक दे दो। जैसे लाल सिग्नल रोड पर आता है तो क्या करते हैं, ब्रेक देते हैं ना। तो ये मन को भी बुद्धि के द्वारा ब्रेक दो ताकि ये मन और कहीं नहीं भटके और ये सुनहरा लाल प्रकाश आत्मा के धाम की यादगार है, यादाश्त दिलाता है कि मेरा वो धाम अखंड ज्योति का महतत्व है और उस महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा परमात्मा के सामने हूँ, जो रूप में ज्योति बिंदु है और गुणों में बेअंत है, सिंधु है, सागर है, दाता है, स्रोत है। उससे जो गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा को प्राप्त हो रही है और मैं आत्मा उन्हीं गुणों में समाहित हो रही हूँ। तो सीधा बैठेंगे, आंखें बल खुली रहे और सामने भी देखेंगे। ये आत्मा भी उस परमात्मा के ध्यान में मग्न है, तो आप भी सामने से प्रेरणा लेते हुए मन की आंख से शिव बाबा को देखें और उनसे सर्व संबंध जोड़ें। अगर आंखें अपने आप बंद हो जाए कोई बात नहीं, मन की आंख तो खुली ही रहे और अंतर में खुशी और नशा तो चढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। तो ये नशा, ये खुशी आत्मा में शक्ति भर देगा। सब विचारों को समेट कर आत्मा शुद्ध विचार में मग्न हो जाए। मैं एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ। एक अंतर की यात्रा अनुभव करें, स्वयं को देखें, भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा हूँ, शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, ये शरीर तो नश्वर है, इस शरीर में विराजमान मैं अविनाशी आत्मा हूँ, एक दिव्य प्रकाश हूँ। मैं आत्मा बुद्धि के द्वारा मन को उड़ान देकर अपने धाम पहुंच जाऊं। पांच तत्वों से पार, जहां सूर्य चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, उसी धाम में मेरा वास है। शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम। जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, बेहद शांति ही शांति है। यहां मैं आत्मा अति शांत हूं। इस धाम में सर्वत्र शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। यहां मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में हूं, उनके सम्मुख हूं। जो रूप में ज्योतिर्बिंदु है और गुणों में सिंधु के समान बेअंत है। शिव पिता, आप सत्यम शिवम सुंदरम हो। अविनाशी हो, सर्व गुणों के सागर हो, बेअंत हो, दाता हो, करुणा सिंधु हो, परम स्रोत हो, आप शांति के भंडार हो। मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। शिव पिता का सानिध्य प्राप्त है। उनके साथ ही मेरे सर्व संबंध है। शिव पिता, मैं आत्मा आपकी अमर संतान हूं। आप सर्व गुणों के दाता हो, मैं आत्मा आपकी संतान सर्व गुणों की स्वरूप हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप का, अपने असली स्वभाव का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा में परमात्म शक्ति भर रही है। परमात्मा के सदा सानिध्य में रहने का ये भाग्य है। कितना आनंद है, कितनी भरपूरता है, कितना हल्कापन है। चले जाइए इस अनुभूति की गहराई में, जैसे बूंद सागर में समा जाती। मैं आत्मा भी शांति के सागर की गहराई में चली जाऊं। और शांति की शक्ति स्वयं में भर दूं। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। एक हल्कापन, शक्ति स्वरूप की स्थिति। सर्व बंधनों से मुक्त, न्यारी और प्यारी अवस्था। मैं शुद्ध आत्मा, परम पवित्र परमात्मा के सानिध्य में। अति शुद्ध हूँ, अब इसी शक्ति को स्वयं में समा कर वापिस लौटे। फिर से इस कर्म क्षेत्र पर आवाज की दुनिया में अपने कर्तव्यों का पालन करने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने, लेकिन एक नई शक्ति के साथ। शांति की शक्ति के साथ, और वही शक्ति इंद्रियों में कर्म द्वारा प्रकट करें। और अपना यह जीवन श्रेष्ठ बनाए। यह जन्म भी सफल और जन्म जन्म सफल करते हैं। यही राजयोग की सार्थकता है। ओम शांति शांति।